તારીખ 21/9/1991 શ્રી સમયસર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 40. મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા હમિંગ છે.
આકિંચન એટલે લોભ રહિત અથવા પર પદાર્થની વાંછા રહિત પણ એને આકિંચન પણ કહેવામાં આવે છે. મુખ્યપણે મુનિ દશામાં ચારિત્ર વિષય એક આ વ્યાખ્યાન છે, પણ પોતાના પરિપૂર્ણ સ્વરૂપના આધારે જેને પરગ્રહ સંબંધી સુખબુદ્ધિનો અભાવ થાય છે તેને સુખને અર્થે પરપદાર્થની વાંછા ઉત્પન્ન થતી નથી. લોભનો અભાવ થવો લોભના પરિણામથી પ્રતિપક્ષભૂત પરિણામ છે એને આકિંચનના પરિણામ કહેવામાં આવે છે. મારે મારા સ્વરૂપ સિવાય બીજું કાંઈ જોઈતું નથી એવો જે અભિપ્રાય તે ચારિત્રના આકિંચન ધર્મનું મૂળ છે. અહીંયા તો પદ્મનંદી મુનિરાજે ત્યાં સુધી વર્ણન કર્યું છે કે મુનિઓને શાસ્ત્રનું જે અગાધ જ્ઞાન હોય છે તે જ્ઞાનનું પણ મમત્વ વખતે અભિમાન હોતું નથી. બીજા મુનિઓને પોતે જ્ઞાનનો ઉપદેશ દેવામાં જરાય સંકોચ કરતા નથી, અથવા જ્ઞાનનું ઊંડું રહસ્ય હું બીજાને આપી દઈશ કહી દઈશ પોતે મારાથી પણ આગળ વધી જાય એવા છે એવો વિકલ્પ પણ મુનિને આવતો. બીજા કોઈ શરીરાદીનો તો પરિગ્રહ નથી પણ જ્ઞાનનો પણ પરિગ્રહ નથી આ પ્રકારથી એમ કહેવું છે. કોઈ બીજા મુનિ પોતાથી પાછળ દીક્ષિત થયા હોય અને સ્વરૂપાશ્રિત પુરુષાર્થ કરીને પોતાની પહેલા કેવળ જ્ઞાન પામી જતા હોય તો તેના પ્રત્યે તેને પ્રમોદ અને અનુમોદના ભાવ આવે છે. કેવું વ્યાખ્યાન કર્યું છે આના ઉપર. એવી રીતે સમ્યક દ્રષ્ટિ ગ્રહસ્થોને પણ જ્ઞાન ચારિત્ર આદિ ગુણોમાં જે પોતાથી અધિક હોય બીજા સાધર્મી તેમની પ્રત્યે અનુમોદના અને બહુમાન હોય છે, પ્રમોદ આવે છે એના પ્રત્યે. વિકલ્પ વખતે અધિક ગુણવાન પ્રત્યે જો અનુમોદના ન હોય તો તેવા જીવને ગુણની રુચિ નથી. ગુણ પ્રમોદ અતિશય ગુણ પ્રમોદ રહે બીજાના ગુણ પ્રત્યે અત્યંત પ્રમોદ આવે એને અંતર્મુખ ભાવ થાય છે, કેમ કે નિજગુણી રૂપી છે. તેવા મુનિઓ તો અંતરમાં જરા પણ ગોપીવા વગર સરળપણે પાત્ર જીવને સર્વ રહસ્યનો ઉપદેશ કરે છે. મોક્ષ માર્ગનું ઊંડું રહસ્ય છે એનો ઉપદેશ કરે છે, એમાં સંકોચ કરતા નથી. ઉપદેશનો વિકલ્પને પણ અને ઉપદેશના વિકલ્પને પણ પોતાના માનતા નથી. શરીર અને વિકલ્પનું મહત્વ તેમને નથી અને આહાર તથા ઉપદેશ આદિના વિકલ્પને તોડીને વિતરાગ સ્વભાવમાં જેવો સ્થિર થયા છે એવા વિતરાગ ભાવમાં રહેલા મોહ રહિત અને લોભ રહિત મુનિરાજને આકિંચન ધર્મ છે એમ કહેવામાં આવે છે. એવી સ્થિરતા રૂપ ચારિત્ર નો ધર્મ મૂળ શ્રદ્ધા અને અભિપ્રાય માંથી ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે મુમુક્ષુ એની શ્રદ્ધા કર્તવ્ય છે, એવો અભિપ્રાય દ્રઢ કર્તવ્ય છે કે જેમાંથી એ પ્રમાણે આત્મ સ્થિરતા અને વિતરાગતાની ઉત્પત્તિ થાય છે. એ આજના આકિંચન ધર્મ પ્રત્યે લોભ રહિત પણ આકિંચન, એટલે લોભ રહિત પણ એને આકિંચન ધર્મ કહેવાય. પરિગ્રહ રહિત પણ, પરિગ્રહ પણ લોભ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. મમત્વ ભાવ એનો ત્યાગ થવો, વાંછાનો ત્યાગ થવો, ખાસ કરીને અનેક પ્રકારના પદાર્થની ઈચ્છા જીવને તે પદાર્થોમાંથી સુખ લેવાની વૃત્તિને લીધે, સુખાભાસને કારણે, સુખબુદ્ધિ હોવાને લીધે વાંછાઓ થાય છે. પોતાના આત્મામાંથી સુખનો અનુભવ થાય છે, આત્મિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેને તે વાંછાઓમાં આકુલતાનો અનુભવ થાય છે. જ્ઞાન અને અજ્ઞાનમાં આ ફેર છે. બીજા જીવોને વાંછામાં સુખ લાગે છે, જ્ઞાનીઓને વિકલ્પ થાય તો પણ એમાં દુઃખ આવે લાગે છે. આમ વિરુદ્ધ પ્રકાર છે. એટલે વાંછા સંબંધીનું એનું જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન સાચું જ્ઞાન છે અને તેથી તેનો નિષેધ આવે છે. એ પ્રકારે ધ્યેય અને ઉપાધિનો જેને વિવેક છે એને સમ્યક જ્ઞાન અને વિતરાગતાપૂર્વક આકિંચન ધર્મની પ્રાપ્તિ હોય છે. હા, જ્ઞાનનો પણ પરિગ્રહ નથી એટલે જ્ઞાન બીજાને આપે છે એમ કે છે. પરિગ્રહ છે ને એનો અર્થ એવો છે કે પકડ કરે આપે નહીં બીજાને. પરિગ્રહ ચારે બાજુથી પકડ કરવી એને પરિગ્રહ કહે છે. એ પરિગ્રહ શબ્દનો જેટલી અર્થ છે એટલે ચારે તરફથી સરખી રીતે એકદમ, ગ્રહ એટલે ગ્રહણ કરવું, પકડ કરવી. હા, મમતા પરિગ્રહ શું છે, અથવા ભગવાન ઉમા સ્વામીને સૂત્ર લિખા હૈ મૂર્છા પરિગ્રહ. મૂર્છા મેને ક્યા કે પર પદાર્થ મેં મૂર્છિત હોકર સુખ લગતા હૈ તો મૂર્છા સ્વયં પરિગ્રહ હૈ. એસી બેભાનપણે મેં જો મૂર્છા હોતી હૈ ઉસકા ત્યાગ હો જાના ઉસકો આકિંચન ધર્મ કહેને હૈ આતા હૈ. કિંચન એટલે કુછ ભી, કુછ ભી નહીં ચાહીએ. મેરા સ્વરૂપ નિરાલંબ નિરપેક્ષ હૈ, તમને જો અધિકાર ચલતા હૈ ને, મુજે કિસી કા આધાર કી આવશ્યકતા નહીં હૈ, ઇસલિયે મુજે કુછ નહીં ચાહીએ, ઉસકો આકિંચન કહેને મેં આતા હૈ. મોક્ષું કી ભૂમિકા મેં પૂરા વિતરાગ માર્ગ કા ઓર મોક્ષ કા મૂળ બીજ, બીજ ઉત્પન્ન હો જાતા હૈ. ફિર બીજ મેં સે સારા વૃક્ષ કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ. મોક્ષું કી ભૂમિકા એ બીજ રૂપ ભૂમિકા હૈ. બીજ યહાં બો દેતા હૈ ઉસકો વૃક્ષ કી ઉત્પત્તિ યા ફલ કી પ્રાપ્તિ હો જાતી હૈ. તો મોક્ષું કી ભૂમિકા યથાર્થ આ ગઈ તો કામ બરાબર હો ગયા. એક દફે ભી મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા યથાર્થ હો જાની ચાહીએ. જિસમેં જીને લિખા હૈ કે અનંત કાલ મેં સહી મુમુક્ષુતા કભી નહીં આઈ. કહેલાને વાલી નામ માત્ર મુમુક્ષુતા તો આઈ હૈ લેકિન સહી મુમુક્ષુતા, સચ્ચી મુમુક્ષુતા આઈ નહીં. વરના ઉસકો મોક્ષ માર્ગ કી પ્રાપ્તિ હુએ બિના રહે નહીં. હાં, વો તો હૈ, વો તો અપને કો અપના જાંચ કરના હૈ. વો બાત તો અચ્છી તરહ સમજની હૈ. જિજ્ઞાસા કા નિષેધ નહીં હૈ, જિજ્ઞાસા હોની હી ચાહીએ. और जिज्ञासा भी मुमुक्षु की भूमिका का एक यथार्थ पहलू है। जिज्ञासा का निषेध नहीं है, प्रश्न में जो जिज्ञासा है उसका निषेध नहीं है, जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए। चलता अधिकार है, संवर अधिकार, 182, 182, 183 गाथा का भावार्थ थोड़ा चला है, फिर से ले लें। उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है, आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है और उपयोग भी ज्ञान स्वरूप है। जैसा उपयोग है ऐसा आत्मा है, ऐसा कहना का अभिप्राय है। उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से स्वयं ज्ञान स्वरूप है और क्रोधादि भाव कर्म, नानावरणादि द्रव कर्म, शरीरादि नौ कर्म, ये सब उद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ है। ये चैतन्य है और ये जड़ है, तीनों जड़ है। दो तो जड़ ही है द्रव्य रूप से और भाव कर्म चैतन्य का विभाव परिणाम जड़ आश्रित उत्पन्न होता है और भाव भी जड़ सदृश है। जैसी जड़ प्रकृति का स्वभाव है वैसा चैतन्य का विभाव परिणाम का स्वभाव है, इसलिए और चैतन्य स्वभाव के विरोधी होने से, जड़ भी चैतन्य से विरुद्ध होने से और विभाव भी चैतन्य से विरुद्ध होने से उसको भी जड़ के खाते में खतावने में आता है। तीव्र अनादर है, ये जड़ भाव का तीव्र अनादर है, निषेध है तीव्र रूप से। तो अधिक अनादर करने के लिए क्या कहते हैं कि उनको और ज्ञान को, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म, उनको और ज्ञान को प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। जैसे जी ने लिखा है, भावार्थ है, वो जैसन जी पंडित हुए 150 साल पहले जयपुर में, ज्ञानी थे, उन्होंने ये बात लिखी है। तो द्रव कर्म का और नो कर्म का परमाणु का प्रदेश तो भिन्न है, लेकिन कुछ वाद विवाद होता है या शंका होती है या समाधान नहीं होता है तो ये भाव कर्म के विषय में होता है। लेकिन प्रयोजन यहाँ है निषेध करने का, उस प्रयोजनवश यहाँ भाव कर्म भी जीव के क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में नहीं है। क्या कहना है, ज्ञान का क्षेत्र हम देखते हैं तो उसमें अकेला ज्ञान ही है। क्या है उसमें, अकेला ज्ञान हमको दिखने में आता है। जब हमें हमारा अकेला ज्ञान का अनुभव करते हैं तो उसमें राग का अनुभव नहीं होता। क्या हम एकला ज्ञान का अनुभव करते हैं, भिन्न ज्ञान का अनुभव करते हैं या शुद्ध ज्ञान का अनुभव करते हैं तो उसमें हमें राग का अनुभव नहीं होता है। अगर दोनों का क्षेत्र एक होता तो, दोनों का क्षेत्र एक हो जाता या एक होता तो एक का अनुभव करने में दूसरे का अनुभव हो जाता, लेकिन हम, लेकिन हमको तो अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसा कहते हैं। जैसे नमक में चीनी का अनुभव नहीं होता, शक्कर का, भले ही एक खाद्य पदार्थ में, एक वानगी में नमक भी डाला हो और शक्कर भी चीनी भी डाली हो और दोनों है तो उसका पानी हो गया हो, ओगली जाए, મીઠું પણ ઓગળી જાય અને ખાંડ પણ ઓગળી જાય છે. તો દોનો મિલ ગયા એક દૂસરે મેં ક્યા, ખારાપના મેં મીઠાપન નહીં આતા ઓર મીઠાપના મેં ખારાપન નહીં આતા. દોનો કા ક્ષેત્ર એક હોતા યહી તો બાત કી કથા કરની હૈ, ઇસલિયે હમને યે બાત છેડી હૈ કે ઉસ વ્યંજન મેં ખાદ્ય પદાર્થ મેં દોનો કા એક ક્ષેત્ર હુઆ કે નહીં હુઆ. તો કહેતે હૈ કે નમક મેં ચીની કા મિલાવટ નહીં હુઆ હૈ, ક્યોંકે હમ જબ નમક કી પરીક્ષા કરતે હૈ તો ઉસમે મીઠાપન નહીં આતા. હમ બરાબર અલગ નમક કી પરીક્ષા કર લેતે હૈ કે ઉસમે નમક કમ હૈ યા અધિક હો ગયા હૈ યા સબ પ્રમાણ રહા હૈ, એસા હમ પરીક્ષા કર લેતે કે નહીં કર લેતે. તો સભી દૂસરે સ્વાદ યહાં પર હોને પર ભી ખટાઈ કા મીઠાઈ કા તીખાસપણે કા સબ સ્વાદ વહાં હોને પર ભી સબ સ્વાદ કા જ્ઞાન મેં વ્યવચ્છેદ કરકે ક્યા કરકે ઉડા દેતે હમ જ્ઞાન મેં સે સભી સ્વાદ કો જ્ઞાન મેં સે ઉડા કર ઉડા કે દેખ કરકે સિર્ફ ખારાસ કા હમ જ્ઞાન કરતે હૈ. અગર ખારા ખારાસ મેં ये सब इतना मिक्स किया कर हो गया होता तो हमें इनकी परीक्षा नहीं हो सकती. थोड़ा विषय सूक्ष्म अवश्य है, फिर भी उस सूक्ष्मता से उसको समझना है कि एक तत्व में दूसरा तत्व का मिलावट कभी होता नहीं. जब भी तो उसको तत्व कहते हैं, जैसे कि राग आश्रव तत्व है और ये ज्ञान में संवर तत्व हम लेते हैं, तो एक तत्व में दूसरा तत्व का अभाव है. भले ही मोटे रूप से स्थूल रूप से ऐसा लगे कि एक ही जगह दोनों है, लेकिन एक में दूसरे का अभाव होता है. देखिए ये टेलीविजन का स्क्रीन होता है ना पर्दा, उसी क्षेत्र पे पिक्चर आता है. एक न्याय से दोनों का एक क्षेत्र है, एक न्याय से दोनों का अलग क्षेत्र है, क्योंकि पिक्चर का नाश होता है पर्दा का नाश नहीं होता. सर्वथा अभेद क्षेत्र हो जाता तो एक का नाश में दूसरे का भी नाश हो जाता, इसलिए एक क्षेत्रपणा नहीं है. अब यहाँ क्षेत्र एक नहीं है ऐसी बात को उठाई क्यों? जो हमें विचार करना है वो उस बात का विचार करना है कि ये ज्ञानी पुरुषों ने इस बात को क्यों उठाई इधर, इसका विचार करना है कि हमें राग का आधार नहीं लेना है. क्या लोग संसार में क्या बोलते हैं? कोई अगर आदमी कोई मनुष्य जीवन जीता है तो के आशा आशा है अभिलाषा है, उसके आधार से उसका जीवन चलता है. क्या क्या बोलते हैं? आशा मर गई तो जीवन नहीं रहा, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? जैसे कि घर में एक पीछे सदस्य चले जाते हैं. गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे कि एक आदमी अकेला था, फिर अपना छोटा गांव छोड़ करके वो चला गया बड़े शहर में. वहाँ फिर इनकी शादी हुई, फिर बाल बच्चे भी हुए, फिर एक पीछे एक सब मरने लगे, फिर बाद में अकेला रह गया. क्या हुआ? जो अकेला गया था वो अकेला फिर रह गया. तो अकेला रह गया, अब कैसे जीता है? कि भाई उनको कुछ आशा है जीवन में, कुछ जीने के लिए आशा का सहारा वो जीवन जीता है. ऐसा एक संसार में राग का आधार से जीव जीवन गुजारता है, उसमें दुखी बहुत होता है, भिन्न भिन्न पदार्थ की आशा रखता है और वही राग के आधार से उनको दुख होता है. अगर अवकाश ऐसे ममत्व त्याग करके सभी प्रकार का राग का आधार छुड़ाना है यहाँ पर, इसलिए कहते हैं कि तेरे क्षेत्र में वो नहीं है। बहुत सूक्ष्मता से और गहराई से कुछ विचार करें, इस विषय को समझने की कोशिश करें, तो निर्विकल्प ध्यान जो स्वरूप के अवलंबन से उत्पन्न होता है सम्यक दर्शन के काल में, क्या होता है? स्वरूप लीनता रूप ध्यान की उत्पत्ति होती है। उसमें स्व क्षेत्र क्षेत्र अपेक्षाएं चैतन्य क्षेत्र का आधार मिलता है। अन्य मत में ध्यान के काल में दूसरे भगवान के कोई लक्ष्य रख करके उनका ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हो? कि हमारे प्रभु का हम ध्यान करते हैं, हमारे परमेश्वर का, हमारे ईश्वर का हम ध्यान करते हैं। कहाँ है वो? कि वो कहीं स्वर्ग लोक में, विष्णु लोक में, कहीं कहीं भी अपने लोक में विराजमान है, उसका मैं ध्यान करता हूँ। तो उपयोग वहां लंबाता है, उनको शुभ राग होता है। यहाँ अपने स्वक्षेत्र के बाहर उपयोग नहीं ले जाना है। क्या? स्वरूप ध्यान में अपने स्वक्षेत्र अवलंबन का विषय रहता है, परक्षेत्र का अवलंबन का विषय नहीं होता। तो अब स्वक्षेत्र में एक दूसरी आपत्ति है। क्या? कि लोग ऐसे मानते हैं अज्ञानवश के मेरे स्वक्षेत्र में चैतन्य भी है और राग भी है, तो मैं अपना स्वक्षेत्र का अवलंबन लेने को जाता हूं तो वहां राग का भी अवलंबन आ जाता है। तो ज्ञानी श्री गुरु कहते हैं कि भाई तेरे क्षेत्र में राग का क्षेत्र का अभाव है। क्या कहते हैं? तेरा शुद्ध चैतन्य क्षेत्र ऐसा है कि जिसका अवलंबन लेने में तुझे राग का अवलंबन नहीं होगा, क्योंकि तेरे क्षेत्र में वो नहीं है। ऐसा अवलंबन लेने के लिए, आधार लेने के लिए ये बात वहां रखी है। बात रखने का कोई प्रयोजन है इधर? ऐसा है। आकाश क्षेत्र तो, आकाश तो निमित्त है, निमित्त के अपेक्षा से एक ही क्षेत्र है। किसका? शरीर का भी। नो कर्म का, द्रव्य कर्म का और भाव कर्म का आकाश के निमित्त से आत्मा और वो तीनों सब एक क्षेत्र में है। ये निमित्त अपेक्षा बात है। अब उपादान के अपेक्षा देखो तो चैतन्य के क्षेत्र में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म सभी क्षेत्र का अभाव है। उपादान के शुद्ध चैतन्य उसको उपादान कहेंगे। आंशिक निश्चय से कहो तो अपने स्वरूप में परमाणु का क्षेत्र नहीं है, चैतन्य में जड़ परमाणु का क्षेत्र नहीं है और शुद्ध चैतन्य में रागादि का क्षेत्र भी नहीं है। ऐसी बात है। बहुत स्पष्ट लिखा है, उनको और ज्ञान को प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। कल बात चली थी आगम अध्यात्म की, तो आगम की विवक्षा में उसका क्षेत्र भेद नहीं है ऐसा कहेंगे, और अध्यात्म की विवक्षा में ऐसा कहेंगे कि बिल्कुल अत्यंत भेद है, क्षेत्र से भी अत्यंत भेद है। ऐसे ही अध्यात्म तत्व का आधार लिया जाता है, या अध्यात्म तत्व का आधार लेने के हेतु से ऐसा कहने में आता है तो ये जीव को उपकारी है, ये जीव को हितकारी है। इसलिए इस बात को स्वीकार करना चाहिए और उसको अंगीकार भी करना चाहिए। मार्ग को सरल कर दिया है। ऐसा सुगम और सरल किया है मार्ग को, अपने अनुभव को व्यक्त कर करके सरल कर दिया है। इसलिए उपयोग में क्रोधादिक कर्म और नो कर्म नहीं है, अपने उपयोग में क्रोधादिक कर्म और नो कर्म नहीं है, कर्म नो कर्म भी नहीं है, और क्रोधादिक में अपने उपयोग में क्रोधादिक भाव कर्म भी नहीं, द्रव्य कर्म भी नहीं और नो कर्म भी नहीं है, क्योंकि उपयोग में केवल ज्ञान का अनुभव होता है। उपयोग में क्रोधादिक का कर्म का और नो कर्म का अनुभव नहीं होता है। हाँ, जानने का होता है लेकिन अनुभव कर सकते नहीं, करना चाहे तो भी कर सकते नहीं, जान सकते हैं ऐसी बात है। भिन्न द्रव्य का और भिन्न जाति के भाव का ज्ञान में अनुभव करने का अवकाश ही नहीं है। ज्ञान में ज्ञान का निविड़पणा है, घनिष्ठपणा है, इसलिए तो गुरुदेव दृष्टांत देते थे वो घी का, तो ठंड के दिनों में जो घी जम जाता है ना, तो उसको नाखून से अगर उखाड़ने का कोशिश करे तो लग जावे उसमें, फांस लग जावे उसकी, और तवे था से निकालने को तो मेहनत करे तो तवे था बल जावे है। अभी तो नहीं आ रहा है लेकिन आता था, इसकी बात है, ये शुद्ध घी की बात है, अभी नहीं आता है। इसका कारण है कि इसमें मिलावट हो गया, एडल्ट्रेशन हो गया, भेसल हो गया। अब गुरुदेव तो शुद्ध घी की बात करते हैं, ऐसे कहते हैं कि शुद्ध चैतन्य कैसा है, ये तो दृष्टांत है। सिद्धांत में शुद्ध चैतन्य कैसा है, कि शुद्ध चैतन्य शुद्ध ज्ञान ऐसा है कि इसमें राग का प्रवेश नहीं, उसमें कर्म नो कर्म का प्रवेश नहीं है, ऐसी बात है। राग का अनुभव हो ही नहीं सकता क्या किशोर भाई? राग जानने में आता है, अनुभव हो नहीं सकता। राग का अनुभव होता है, ये अध्यास है। क्या है वो? अध्यास है, अनुभव नहीं है, वो भ्रमणा है, भ्रमणा है, अनुभव नहीं हो सकता है। तो वक्ता कर्म जया करके बाणु त्राणु गाथा में तो वो बात लिया है, वो अशक्य है। देखिए अमृतचंद्र आचार्य क्या कहते हैं, वराणु गाथा की टीका, और टीका में भी आखर की पांचवी चौथी पांचवी पंक्ति, कि शीत उष्ण की माफक, जैसे शीत और उष्ण ये परमाणु की स्पर्श गुण की अवस्था है, जीव की अवस्था नहीं है। ज्ञान न ठंडा होता है न ज्ञान कभी उष्ण होता है, तो जैसे शीत उष्ण रूप अशक्य, ज्ञान का होना अशक्य है, हो ही नहीं सकता ज्ञान, ऐसे शीत उष्ण की माफक जिसके रूप से आत्मा द्वारा परिणमन होना अशक्य है, ऐसा राग द्वेष सुख दुख उद्गल जनित, क्या जैसे शीत और उष्ण रूप ज्ञान हो नहीं सकता, वैसे आत्मा द्वारा ज्ञान द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसा राग, ऐसा द्वेष, ऐसा सुख और ऐसा दुख, उस रूप अज्ञान आत्मा होना ही अशक्य है। तो फिर परिणमन होता है ऐसा लगता है ने, तो वो अध्यास होता है, वो अज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता है उसमें, वो तो अज्ञान है। वो अज्ञान पर अज्ञान अज्ञान आत्मा द्वारा परिणमता हुआ ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता है, वो ज्ञान का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का अज्ञानत्व है। और उसमें अज्ञानमय होता हुआ मैं रागी हूँ, मुझे राग होता है, मुझे राग का अनुभव मेरे में होता है, मैं राग करता हूँ, इत्यादि विधि से वो रागादि कर्म का कर्ता प्रतिभाषित होता है। उसको लगता है कि मैं राग करता हूँ, वास्तव में ऐसा बन सकता नहीं, ऐसी बात है। वो है झूठ का अनुभव करता है, दुख का सुख का सब ज्ञान में उसका कोई प्रवेश नहीं है, ये कल्पना है जीव की। मुझे असाता हुई इसका दुख होता है, मुझे साता हुई उसका मुझे सुख होता है, ये कल्पना है। वास्तव में न शरीर की साता असाता और सुख दुख की कल्पना ज्ञान में आ सकती नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है, जान सकता है, अनुभव नहीं कर सकता। देखिए ये बहुत विषय गहराई से समझने लायक है कि ज्ञान के दो प्रकार के परिणमन करने का गुण है, एक जानने का और एक अनुभव करने का, वेदन करने का। तो आत्मा स्वपर प्रकाशक जानने के विषय में है, लेकिन वेदन के विषय में स्वयं स्वप्रकाशक है, पर प्रकाशक नहीं है, पर को वेद नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता है। आत्म सुख का अनुभव में ज्ञान सुख रूप है, एक तो ज्ञान का रूप सुख है और दूसरा सुख गुण की पर्याय का प्रतिभास भी ज्ञान में आता है। थोड़ा सूक्ष्म विषय है, एक गुण को अनंत गुण का रूप होता है, तो ज्ञान सुख रूप हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, तो अपने आप का अनुभव होता है। और उसी काल में जो आत्मा का सुख गुण है वही प्रकट होता है, और उसका फोटो भी पड़ता है ज्ञान में। क्या है? जानने में आता है, सुख को जानता है और अपना सुख रूप को अनुभव करता है, दोनों सदृश है, तो वहां विकल्प तो नहीं है, वहां विकल्प नहीं है। इसलिए एकाकार रूप से अत्यंत सुख का अनुभव हुआ ऐसा लगता है, डबल सुख हो गया वहां, ऐसी बात है। वो जरा अधिक, वो अधिक सूक्ष्म है वो बात। थोड़ा वो तो दर्पण है, चैतन्य तो दर्पण है, जो भी चीज आएगी उसका प्रतिबिंब झेलेगा, वो प्रतिबिंब झेलने के लिए वो हाना नहीं करता कभी, लोकालोक आ जाओ कोई आपत्ति नहीं, ऐसी बात। ऐसा है कि ज्ञान में वेदन करने का जो धर्म है उसका सर्वनाश नहीं हो सकता। क्या नहीं? ध्यान में ज्ञान वेदन का त्याग नहीं होता, नाश नहीं होता कभी। तो परिणमन नहीं है तो क्या है? परिणमन नहीं है तो नाश हो गया कि नहीं हो गया? अस्ति है कि नास्ति है, सवाल ये है। हैं? अस्ति है ना, बस जब तो कोई आओ तकलीफ नहीं है, अस्ति है तो कोई तकलीफ नहीं है। अब अस्ति है फिर भी हमें पता नहीं लगता कि है कि नहीं है, क्या है हमको पता नहीं है इसका, लेकिन है तो सही, है तो सही, लेकिन वो तिरोभूत है। क्या कहते हैं श्री गुरु? कि ये तिरोभूत है इसलिए तुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन नहीं है सो बात नहीं है, है तो सही। तो तिरोभूत है उसको आविर्भूत करो तुम, बस उतनी सी बात है। कितनी बात है? आविर्भूत करने की बात है। जैसे दाल में नमक है, लेकिन हम ध्यान से देखे तो पता चलता है कि ये कमी है या बेसी है या बराबर है, ध्यान देना पड़ता है। ऐसे हमारा ज्ञान वेदन पर हमारा ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमारा दूसरी तरफ है, तो इसलिए उसका वेदन हमें मालूम नहीं पड़ता। वेदन होने पर भी मालूम नहीं पड़ता, तो मालूम पड़ने के लिए आविर्भाव करना, ये बात है। हाँ, आविर्भाव करने का मतलब जिस भाव में भावान्वित होना है उसको आविर्भूत करना, ऐसे कहने में आता है। जैसे क्रोध होता है और तीव्र होने से क्रोधान्वित होता है, क्या होता है? क्रोध हुआ और क्रोधान्वित हुआ, ऐसे ज्ञान का वेदन हुआ और उसमें उसका आविर्भूत पड़ा हुआ, ऐसी बात है। तो आविर्भूत होने में ऐसा हम कहते हैं कि स्वसम वेदन प्रकट हो गया, तो ये तिरोभूत में से आविर्भूत होने की बात है। अगर होता ही नहीं तो लक्षण पर से लक्ष्य पहचाना नहीं जाता। क्या? ज्ञान लक्षण में, उपयोग लक्षण में ज्ञान वेदन सर्वथा नहीं होता तो इस लक्षण से अनुभूति स्वरूप आत्मा की पहचान नहीं होती। इसलिए अनुभव है वहां, अनुभव नहीं है ऐसा नहीं है, है? अपने स्वयं का अनुभव है, मालूम नहीं हो रहा है, ये बात है। मालूम नहीं हो रहा है इसका क्या कारण? कि हमारा लक्ष्य ज्ञेय के प्रति है, हम ज्ञेय भाव में या ज्ञाकार ज्ञान में आविर्भूत हो चुके हैं और उसको, इसी बात को, इसी प्रसंग को आचार्य महाराज ज्ञेय लुप्तता कहते हैं। क्या कहते हैं? पंद्रह गाथा में क्या शब्द प्रयोग किया कि नहीं किया? कि जो जीव ज्ञाकार ज्ञान में आविर्भूत हुआ है, जिसको ज्ञाकार ज्ञान का आविर्भाव है, वो जीव ज्ञेय लुप्त होता है, उसको ज्ञेय की आसक्ति हो जाती है। तो जो ज्ञेय में आसक्त है उसको अपने ज्ञान का अनुभव नहीं मालूम पड़ता है। तो जानने के विषय में है, स्व को भी जानता और पर को भी जानता है, लेकिन स्व को वेदता है, पर को वेद सकता नहीं, इतनी मर्यादा है। इतना अगर स्पष्ट समझ में आ जावे तो फिर ये वेदन के विषय में कोई समझ की गड़बड़ नहीं रहेगी, और जो प्रयत्न करना है वो स्पष्ट रूप से कर पाएंगे। हाँ, और जानना भी हो, जानना भी होता है और वेदन करना भी होता है, पर का वेदन नहीं हो सकता, अशक्य है। वो तो दिखाया पाणों का था, जैसे शीत उष्ण का वेदन होना अशक्य है, वैसे राग द्वेष सुख दुख आदि जो भी हम अनुभव मानते हैं तो ऐसा होना अशक्य है, ज्ञान का ऐसा होना अशक्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म कोई नहीं, कर्म का प्रतिबिंब पड़ता है, जो कर्म का विपाक आता है, जो प्रकृति का विपाक आता है उसका ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है। क्या होता है, ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है, और ज्ञान में दो प्रकार से अवलंबन लेने का भी होता है, या तो ज्ञान स्वावलंबन में रहे या तो ज्ञान परालंबन में रहे। तो जब पर पदार्थ का प्रतिबिंब आता है ज्ञान में, तब तो ज्ञान उसका अवलंबन लेता है, तो उस आधार से, ये आधार आधे की तो गाथा है, बहुत गहराई है इसमें, इसका आधार लेने से, ज्ञेय का आधार ज्ञान लेता है, तो चारित्र गुण में राग की उत्पत्ति अनिवार्य है। ये मूल बात, मूल से फल तक की बात लिया, अब फल से मूल तक ले जाए अपन इस बात को, जरा और स्पष्ट हो जाएगा कि जीव को राग द्वेष क्यों होता है। क्या जीव के परिणाम में राग द्वेष होने का विज्ञान क्या है, कौन सा विज्ञान है ये, क्यों जीव को राग द्वेष होता है, हमको साइंटिफिक व्यू पॉइंट से समझना है इसको, वैज्ञानिक तरीके से समझना है कि जीव को राग द्वेष क्यों होता है। कि जीव को राग द्वेष चारित्र गुण में जो होता है वो इसलिए होता है कि ज्ञान, ज्ञान का अवलंबन में नहीं रह करके, ज्ञान जो नहीं उसको प्रतिभासित होता है उसका अवलंबन ले लेता है, इसलिए उसको राग द्वेष होता है। तो राग द्वेष होने का मूल क्या है, कि ज्ञेय की आधार बुद्धि, ज्ञेय का आधार, ये आधार छुड़ाते हैं इधर। समवर अधिकार में पहली बात वो लिया है, और बीच में नहीं है, जो है वो तो है अपने आप में है। तो अगुरु लघुत्व, अगुरु लघुत्व का काम करता है, अपने तो अपना अनुभव देखना है। अगुरु लघुत्व का परिणाम इतना सूक्ष्म है कि वो केवली गोचर होता है, तो इसके विचार में चले जाएंगे तो ये समझना छूट जाएगा, कहने का क्या आशय है वो समझ में नहीं आएगा। जब हमारे में राग द्वेष होता है, ठीक है, ऐसा लगता है ना कि हमने राग हुआ, द्वेष हुआ, सुख हुआ, दुख हुआ, क्यों हुआ, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि तूने किसका अवलंबन लिया है वो देख ले, आधार बुद्धि तुझे किसकी है, कि जो भी सामने ज्ञेय आता है ज्ञान का आधार छोड़ करके तुम ज्ञेय का आधार ले लेते हो, इसलिए तुझे राग की उत्पत्ति होती है, द्वेष की उत्पत्ति होती है। अब तुझे पता यह चले कि ज्ञान किसी का आधार लेने की ज्ञान को जरूरत नहीं है, ज्ञान स्वयं निरालंबी पदार्थ है, उसको किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है, तो अपने निजावलंबन में रह जा, तो तुझे राग की उत्पत्ति और द्वेष की उत्पत्ति, मोह की उत्पत्ति, कुछ उत्पत्ति, विकार की उत्पत्ति होने वाली नहीं है। बस यही निर्विकार होने का विज्ञान है, उसी को संवर अधिकार में आचार्य महाराज समझाते हैं, ये बात है। ग्रहण ज्ञान और हम कहते हैं ना कि हमको दुखावा होता है, क्या विकल्प है उसमें? वेदना में कोई विकल्प होता है क्या? निर्विकल्प होती है वेदना। वेदन हमेशा निर्विकल्प रहता है। तो ज्ञान में ज्ञान वेदना है, क्या है? ज्ञान में सुख दुख की वेदना नहीं है, कल्पित सुख दुख की। ज्ञान में ज्ञान वेदना है और अंतर लक्ष्य से अगर ज्ञान वेदना लक्ष्य में लेवे तो आनंद का फुवारा छूटता है, ये बात है। इसमें गुरुदेव का वचनामृत है, बहुत सुंदर वचनामृत है। 1006 नंबर का वचनामृत है ये वचनामृत पढ़ करके तो गुरुदेव खुद प्रसन्न हुए थे। ऐसा वचनामृत एक स्वयं का देखा जब गुरुदेव ने, बढ़िया चीज आ गई है इधर तो। 1002 है, 1006 नहीं, 1002। विकल्प बिना की ज्ञान की वेदना, क्या ज्ञान में ज्ञान वेदन है उसमें विकल्प नहीं है? तो बिना विकल्प की ज्ञान की वेदना कैसी है इसकी जिज्ञासा तो कर, ऐसा कहते हैं। जिज्ञासा करने से तुम उसकी खोज करेगा, अंतर में खोज करके, क्योंकि ये ज्ञान का अंतरंग है। ये जो आकृति उठती है ज्ञाकार ज्ञान है वो बहिरंग है, और ज्ञानाकार ज्ञान है वो अंतरंग है। तो उसका अंतर लक्ष्य करना, वही उसका ही नाम भाव श्रुत है, उसको ही भाव श्रुत ज्ञान कहने में आया है। उसका नाम भाव श्रुत का लक्ष्य है, और राग की अपेक्षा छोड़ करके, मैंने राग का प्रतिबिंब आएगा, क्रोध की प्रकृति का उदय का प्रतिबिंब आएगा, जो भी प्रकृति का उदय है उसका प्रतिबिंब आएगा, लेकिन उसकी उपेक्षा करके, क्या करके? अपेक्षा नहीं करके, मतलब उपेक्षा करके, नमक को निर्णय करने के, नमक का स्वाद का निर्णय करने के काल में तिखास की उपेक्षा होती है, वहां चीनी डाली उसकी मिठाई की उपेक्षा होती है, खटाई डाली है उसकी उपेक्षा होती है। तो राग होने पर भी राग की अपेक्षा छोड़ करके, मतलब उसकी उपेक्षा करके, स्वयं का वेदन क्या है वो स्वयं रूप से है, वहां अस्तित्व मालूम पड़ता है, मौजूदगी अपनी वहां मालूम पड़ती है। ज्ञान वेदन में स्वयं की मौजूदगी का एहसास होता है, ऐसा स्वलक्ष्य करके भाव श्रुत खिलता है, आविर्भूत होता है, प्रकट होता है, और उसी भाव श्रुत में आनंद का फुवारा है, ये बात है। तो कैसा भाव आया है गुरुदेव को, प्रवचन करते करते कैसे बोल दिया, ऐसी बात है। निर्विकल्प ज्ञान वेदन रूप अपना अस्तित्व अनुभव में आता है, उसको ग्रहण कर लिया, ऐसा कहने में आता है। तो गुण से मैंने स्वभाव आ गया, लक्षण से और वेदन से जिसने ज्ञान किया उसको अनुभव ज्ञान आत्मज्ञान कहने में आता है, वो श्रीमद् जी की परिभाषा है। उसमें आनंद होवे ही होवे। हाँ, निर्विकल्प विकल्प से निर्विकल्प नहीं देखा जाता है। हाँ, नाम बहुत बहुत गुणों के परिणमन में कारण कार्य लगता है। नान कारण है, चारित्र कार्य है, ज्ञान कारण है, पुरुषार्थ कार्य है, ज्ञान कारण है, सुख की उत्पत्ति कार्य है, ये सब आता है। इसलिए सभी गुणों में ज्ञान को नेता ऐसा उपनाम दिया जाता है। क्या? ज्ञान नेता है, इसलिए उसके परिणाम को नय कहते हैं। नो नय टू लीड, वो लीडर है, लीड करता है सब को। नय का मतलब क्या? दौड़ना, लीडिंग करना। जो लीडर है वो लीड करता है, इसलिए ज्ञान का पर्याय को नय कहते हैं। नय टू लीड ऐसी बात है। नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध से बात बोलने में आती है, व्यवहारिक तौर से बोलने में आती है। निश्चय में सभी गुण निरपेक्ष और निसहाय है, किसी को किसी के मदद की जरूरत नहीं है, ये बात रखकर है। ऐसी बात है। तो अभी तो समय हो चुका है, कल थोड़ा और चर्चा करेंगे इस विषय पर, क्योंकि ये क्षेत्र भिन्न क्षेत्र और अभिन्न क्षेत्र के विषय में हमारे यहाँ भी विद्वत वर्ग में ये विवादास्पद विषय बन गया है। तो इस विषय के जब स्वाध्याय में हमारे सामने वो विषय आया है, तो सभी पढ़के से उसकी चर्चा करनी चाहिए।